ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೋ ಆಪ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲೆಂಗೆ ಆಪ್ ಸಬ್ ಹಿಂದಿ ಸಮಜತೆ ಹೇ ನಾ ಆಜ್ ಹಮಕೋ ಬಡಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಯಹಾಂ ಆಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ದೋ ಶಬ್ದ ಬೋಲ್ನೆ ಕಾ ಅವಸರ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕಾಟ್ವಾ ಜೀ ನೇ ಜಬ್ ಹಮೇ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕಿಯಾ ಕಿ ಆಪ್ ಯಹಾಂ ಆಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ದೋ ಶಬ್ದ ಬೋಲಿಯೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಹಾಂ ಇಸ್ ಸಮಯ ಅಭಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನ ಅಭಿ ದುಗ್ನಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ತೋ ಹಮನೆ ಸೋಚಾ ಕಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಮೌಕಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಮೇ ನಿಮಂತ್ರಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಬಡಿ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಭಿ ಹುಯಿ ವೈಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹರೇಕ್ ಅವಸರ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತ ಕೇವಲ ಬಹಾನಾ ಢೂಂಡತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಬೋಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚಾಹೆ ವೋ ಜನ್ಮ ಕಾ ಅವಸರ ಹೋ ಮೃತ್ಯು ಕಾ ಅವಸರ ಹೋ ವಿವಾಹ ಕಾ ಅವಸರ ಹೋ ಯಾ ಕೋಯಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೇ ಹೋ ಹರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಸುನೆ ಇಸಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ ಗೀತಾ ಕಾ ಉಪದೇಶ ದಿಯಾ ಥಾ ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ ನಹಿ ಬಲ್ಕಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಯೇ ಉಪದೇಶ ದಿಯಾ ಹೈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಯಹಿ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಉದ್ದೇಶ ನಹಿ ಹೈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮೇ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಜಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಆಪ್ ಸಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೈ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಯಹಾಂ ಬ್ಯಾಠ ಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕುಛ ಸುನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಪಶು ಯೋನಿ ಮೇ ಯಹ ಸಂಭವ ನಹಿ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿ ಮೇ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ನಾ ಸಮಯ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವ್ಯತೀತ ನಹಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಜಾತಾ ಹೈ ಐಸಾ ಹಮಾರೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇ ತತ್ ಪಶುಭಿ ನರಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋ ಹಿತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ ಧರ್ಮೇನ ಹೀನ ಪಶುಭಿ ಸಮಾನಾಃ ಪಶು ಮೇ ಔರ್ ಮನುಷ್ಯೋ ಮೇ ಯೇ ಚಾರ್ ಕಾರ್ಯ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ಕೆ ರಹತೆ ಹೈ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಔರ್ ಮೈಥುನ್ ಲೇಕಿನ್ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮೇ ಜೋ ವಿಶೇಷತಾ ಹೈ ವೋ ಹೈ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಪಶು ಕೋ ಯೇ ಪತಾ ನಹಿ ಹೋತಾ ಕಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ ಔರ್ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮೇ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಅಗರ್ ಹಮನೆ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪಾಲನ್ ನಹಿ ಕಿಯಾ ತೋ ಫಿರ್ ಯೇ ಬಹುತ್ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮೇ ಹಮೇ ಕಾಮ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಅನ್ನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ರೋಟಿ ಕಪಡಾ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉತ್ನಾ ಕರ್ನಾ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಆಲಸಿ ನಹಿ ಬನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ರೋಟಿ ಕಪಡಾ ಮಕಾನ್ ಹಮ್ ಕಿಸ್ಲಿಯೆ ಹಮೇ ಚಾಹಿಯೆ ಹಮೇ ಜೋ ಖಾಕರ್ ಹಮಾರಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಚ್ಛಾ ಬನಾನಾ ಹೈ ಹಮೇ ಅಚ್ಛಾ ಘರ್ ಚಾಹಿಯೆ ರಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಪಡೆ ಚಾಹಿಯೆ ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಯೇ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶ ಹೈ ಯಾ ಇಸ್ಸೆ ಪರೇ ಭಿ ಕೋಯಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಹರೇಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೆ ಲಿಯೆ ಐಸೆ ನಹಿ ಕಿ ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಕೆ ಕಿಸಿ ಏಕ್ ವರ್ಗ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕ ಉದ್ದೇಶ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಐಸಾ ನಹಿ ಹೈ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಮೇ ಹರೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೇ ಆಪ್ನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಾ ನಾಮ ಅವಶ್ಯ ಸುನಾ ಹೈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೆ ಬಹುತ್ ಬಡೆ ಭಕ್ತ ಹೋ ಚುಕೆ ಬಹುತ್ ಕರೋಡೋ ಕರೋಡೋ ಸಾಲ ಪಹಲೆ ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೈ ಜಬ್ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೋ ಕಿ ಬಹುತ್ ಬಡೆ ಅಸುರ ಥೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕೋ ಹೈರಾನ್ ಕರ್ನಾ ಶುರು ಕಿಯಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಭಕ್ತ ಥಾ ತೋ ಉಸ್ ಸಮಯ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ ನೆ ನರಸಿಂಗ ದೇವ್ ಕಾ ರೂಪ ಧಾರಣ ಕಿಯಾ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಕಾ ವಧ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕಿ ಲೇಕಿನ್ ನರಸಿಂಗ ದೇವ್ ಕೆ ಪ್ರಕಟ ಹೋನೆ ಕೆ ಪಹಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೋ ಕಿ ಕೇವಲ 5 ಸಾಲ ಕಿ ಬಾಲಕ್ ಥೇ वो भक्ति में हमेशा तल्लीन हुआ करते थे। दिन रात वो केवल भगवान का भजन करते। हालांकि उनकी उम्र केवल 5 साल की थी, वो जब गुरुकुल में गए अपने अध्यापकों से वो शिक्षण प्राप्त कर रहे थे। आखिर प्रहलाद का जन्म एक असुर कुल में हुआ था, इसलिए प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि प्रहलाद को भी एक बढ़िया असुर बनाया जाए। इसलिए असुरी शिक्षण प्रदान किया जा रहा था प्रहलाद को और असुरों के पुत्रों के साथ में। यह सिखाया जा रहा था कि शत्रु का दमन कैसे करना चाहिए, मित्रों से फायदा कैसे लेना चाहिए, सारे विश्व भर में राजपद की प्राप्ति कैसे की जानी चाहिए, किस प्रकार से अपने शत्रुओं के बीच में छल कपट करके उनमें आपस झगड़ा कराना चाहिए, जो ऐसे सब चीजें होती है राजनीति की, अर्थशास्त्र की, उनको सिखाए जा रहे थे। लेकिन प्रहलाद को बचपन से ही, बल्कि जन्म के पहले से ही ऐसे विषयों में कोई रुचि नहीं थी। वो केवल भगवान की कथा सुनना चाहते थे, भगवान का कीर्तन करना चाहते थे। तो प्रहलाद के जो मित्र थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, क्योंकि प्रहलाद को खेलने में कोई रुचि नहीं थी। अभी साधारणतः हम देखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत रुचि रहती है, लेकिन प्रहलाद को ऐसी रुचि नहीं थी। और जब अध्यापक कहीं बीच में अपने घर में थोड़े समय के लिए चले जाते थे तो प्रहलाद अपने मित्रों को साथ में लेकर उनको हरी कथा करते थे। और प्रहलाद के मित्र बोलते थे कि अरे प्रहलाद, ये तो हमारी आयु नहीं है भजन करने की, भक्ति करने की, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमें भजन करना चाहिए। तो प्रहलाद ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुष जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। हे मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमें भक्ति केवल बुढ़ापे में करना चाहिए, हमें कब से शुरू करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान श्री हरि की भक्ति बिल्कुल बचपन से करता है, कुमार अवस्था से करता है। और कुमार अवस्था से करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में से मिलना बहुत कठिन है। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें बहुत अच्छे ढंग से इस भागवत धर्म का, भगवत भक्ति का हमें अनुशीलन करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हालांकि ये मनुष्य जीवन हमके बहुत समय के बाद में मिलता है, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मिलता है, फिर भी जब मिलता है तो इसकी बहुत कीमत होती है, बहुत मूल्य होता है। क्योंकि केवल इस जन्म में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रहलाद का मित्र, वो लोग सब भी 5 साल के थे, अपने अध्यापक को ध्यान से नहीं सुनते थे, इनको बिल्कुल रुचि नहीं लगती थी। हम देखते हैं कि साधारण पाठशाला में भी बच्चे अपने अध्यापक को, शिक्षक को सुनना नहीं चाहते हैं, आपस में मस्ती खेलकूद करते रहते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है। लेकिन जब प्रहलाद हरी कथा करते तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनते, क्योंकि प्रहलाद इतनी अच्छी तरह से सुनाते कि सारे बच्चों को लगता कि हम और ज्यादा से ज्यादा सुनते जाए। तो प्रहलाद ने उनको समझाया कि देखो, मनुष्य जीवन की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल की होती है। अब ये 100 साल में जो साधारण व्यक्ति होता है, 10 साल तो उसके बचपन में यूं ही चले जाते हैं, और बचपन में तो कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, बच्चे में इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती है, वो कुछ समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, तो उसके 10 साल ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। बाकी 10 साल जब और थोड़ा बढ़ता है तो मन बहुत उसका चंचल रहता है, 10 से 20 साल तक। इस प्रकार से उसके जीवन के 20 साल चले जाते हैं, और बाद में जो बुढ़ापे के 20 साल हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। बुढ़ापे में शरीर को कितना दर्द होता है, बीमारी होती है, नाना प्रकार की चिंताएं रहती हैं, तो भगवान में हम मन केंद्रित नहीं कर सकते हैं और हमारा शरीर हमारा मन साथ नहीं देता भगवान की भक्ति करने के लिए, कोई तपस्या करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे 40 साल बीत जाते हैं और बाकी रहे, जब हम जीते हैं तो हमें सोना पड़ता है। तो साधारण आदमी जो होता है, जिसको भगवत भजन में रुचि नहीं है, हो सकता है वो 12 घंटे दिन में सोता है। मतलब वैसे बाकी के रह गए 60-70 साल, उसमें से अगर 30 साल निकाला जाए तो कितने रह गए, हो गए 70 साल। और इस 70 साल में जो और, या 80 साल में जो 10 साल और है, वो केवल कमाने में लग जाते हैं। और फिर बाकी के रहे केवल 10-20 साल, उसमें भी आदमी अपने कुटुंब के भरण पोषण में दिन रात काम करता है, इधर उधर घूमता है, समाज की जिम्मेदारी होती है, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए कोई समय ही नहीं मिलता भगवान की प्राप्ति के लिए। तो यह स्वभाव है कि मनुष्य भगवान की भक्ति को टालने का प्रयत्न करता है, अभी नहीं कल करेंगे, ये समस्या का समाधान हो जाएगा तब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, वो जब हो जाएगा तो फिर अगली बार हम करेंगे। इस प्रकार से कोई न कोई वजह से हम भगवान की भक्ति में नहीं आना चाहते हैं। ये भौतिक संसार भगवान ने ऐसे बनाया है कि जो भी परिस्थिति में हम हैं, हम सोचते हैं कि यही अच्छी परिस्थिति है और उस परिस्थिति को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसमें आसक्ति बन जाती है। और इतनी आसक्ति हो जाती है कि जब उस परिस्थिति को छोड़ना पड़ता है हमें, चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, उसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। आपने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का नाम अवश्य सुना होगा। देवी देवताओं के वो राजा है, बड़े शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी इतने बड़े राजा होने के बाद भी अगर उसने कोई भक्त का अपराध किया तो उसका फल तो अवश्य मिलता है। एक बार इंद्रदेव को अपने ऐश्वर्य का घमंड आया और अपने गुरु बृहस्पति का उन्होंने अपराध किया, अपमान किया, तो बृहस्पति ने उनको शाप दिया कि आपको पृथ्वी लोक पर जाकर एक सुअर का शरीर लेना पड़ेगा और फिर जब शाप खत्म हो जाएगा फिर से आप पुनः देवराज इंद्र बन के आ सकते हो। तो इंद्र को जब सुअर का शरीर मिला तो अपने इंद्र के जन्म को भूल गया, केवल अपने सुअर के समाज में वो रहने लगा। उस और क्योंकि वो पहले जन्म में इंद्र था, राजा था, तो इस जन्म में जब उसे सुअर के समाज में जन्म मिला तो सुअरों का भी राजा बन गया, बड़ा शक्तिशाली सुअर बन गया, बड़े अच्छे भाषण वगैरह देता था, अपने सुअर के समाज में सबको प्रभावित किया, उनका नेता बन गया, राजा बन गया। फिर उसके भी कई रानियां हुई, फिर कई बच्चे हुए, बड़ा समाज हुआ। उन सारों का देखभाल करते करते बहुत समय बीत गया, इसकी समस्या उसकी समस्या सब हल करते करते समय बीतते जा रहा था। और ये सुअर को बिल्कुल याद नहीं था कि मैं पिछले जन्म में इतना बड़ा राजा था, पृथ्वी का राजा भी नहीं स्वर्ग का राजा था, सब भूल गए। एक बार नारद महर्षि वहां से गुजर रहे थे, नारद देव ने देखा कि अरे ये क्या दुर्दशा है, कहां देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा और आज ये सुअर के शरीर में है। तो उन्होंने कृपा की नारद इंद्र के ऊपर और इंद्र से जाकर कहा कि हे इंद्र, आपको अभी चलना होगा, आप तो स्वर्ग के राजा है, अगर आप नहीं आएंगे तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। तो इंद्र ने जवाब दिया, इंद्र अर्थात उस सुअर ने जवाब दिया कि हे नारद, आप तो बड़े ऋषि हैं और आपकी बात मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, परंतु अभी आप देख रहे हैं कि मैं मेरे समाज में कितना अभी उलझा हुआ हूं, मेरे कितने सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरा अभी बड़ा परिवार है, और मेरे ऊपर इतना समाज सुअरों का मेरे ऊपर निर्भर है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर क्या होगा? ये लोग किस समस्या का समाधान कौन करेगा? अभी मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, अभी नहीं, मेरी सारी समस्याओं का समाधान करके फिर मैं आऊंगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। थोड़े समय बाद नारद जी फिर उसके पास गए, अरे आप तो इंद्र हो, देवराज इंद्र, आपको वापस आना चाहिए। तो इंद्र बोलने लगा कि अरे देखो, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यार से हमें बुला रहे हैं, हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनको कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसे हर एक बार जब भी नारद देव वहां जाते थे तो ये बार बार बात को टालते थे। तो एक बार नारद देव को बड़ी कृपा आई, सोचा कि जब तक हम कुछ और मामला हमारे हाथ में नहीं लेंगे, ये देवराज इंद्र तो ऐसे के ऐसे ही सुवर के योनि में रहेंगे और शाप समाप्त होने के बाद भी उनको वापस आने की इच्छा नहीं होगी। तो उन्होंने फिर अपने कृपा से उसका गला काट दिया और फिर से उसको इंद्रलोक जबरदस्ती भेज दिया। तो ये है परिस्थिति। हम भौतिक संसार के हर एक अवस्था में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे जो वर्तमान परिस्थिति है उससे भी परे कोई और अवस्था है। भगवान की भक्ति हरेक को करनी चाहिए। जो भी परिस्थिति में हम हों उसमें हमें भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जीवन के हरेक अवसर में, जीवन के हरेक आयु में कोई ना कोई अड़चन आती है जो कि हमें भगवान को प्राप्त करने में एक प्रकार का बंधन बन जाता है। इसलिए एक संत ने कहा है, बाल्यवस्थात क्रीड़ा आसक्तः, तरुणावस्था तरुणी सक्तः, वृद्धावस्था चिंता आसक्तः, परे ब्रह्मणि कोपी न सक्तः। कि जब मनुष्य बाल्यवस्था में होता है, बचपन में, वो केवल खेल क्रीड़ा में आसक्त रहता है, खेल क्रीड़ा के अलावा कुछ और जानता नहीं है। आप में से जो माता पिता है आप जानते हैं, जब बच्चा बाहर खेलने को जाता है तो उसे अगर घर में बुलाना होता है तो बहुत कठिन हो जाता है। वो इतना खेल में रमण करता है, उसको वापस आने की इच्छा ही नहीं करती है। अपना भोजन भी भूल जाता है, अपनी निद्रा भूल जाता है, पढ़ाई तो भूलेगा ही लेकिन बाकी सब कुछ भूल जाता है। तो बचपन की अवस्था में केवल मनुष्य क्रीड़ा करता है, खेलते रहता है दिन भर, और किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए समय नहीं और न इच्छा। लेकिन जब वही बच्चा अब तरुण हो जाता है तो उसका मन विचलित होने लगता है। तरुण अवस्था तरुणी सक्त है, तो तरुण तरुणी के प्रति आसक्त होता है और तरुणी तरुण के प्रति आसक्त होता है और सारी युव अवस्था ऐसे चले जाता है। और फिर जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उस समय उसका जीवन, उसका सारा समय केवल चिंता में चला जाता है। अभी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारे कुटुंब का क्या होगा, समाज का क्या होगा, तो इस प्रकार से नाना कारणों से वो चिंता करते रहते हैं बुढ़ापे में। तो एक संत शोक करते हैं, बाल्यावस्था ऐसी चली गई, तरुण अवस्था वैसी चली गई, बुढ़ापे में जब कम से कम हम थोड़ा बहुत भक्ति करना चाहिए वो भी चिंता करते करते समय बीत जाता है, तो भगवान की भक्ति करने के लिए कब समय होगा किसी के पास? हर अवस्था में हम बोलते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, तो कब होगा समय? और जानने के पहले मृत्यु आ जाती है, और मृत्यु का सामना जब करते हैं तो हम बोलते हैं कि यमराज जी अभी नहीं, थोड़े बाद में आइए, लेकिन नहीं होगा। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि एक बार उनके पहचान के एक व्यक्ति थे, और जब उनके मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि केवल मुझे 2 साल और दीजिए, 2 साल में मुझे और बहुत कुछ करना है, जब मैं 2 साल में मेरी योजनाओं को समाप्त कर लूंगा तब फिर मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो ये है परिस्थिति। हर परिस्थिति में हम संतुष्ट नहीं है, हम सोचते हैं कि मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, लेकिन मृत्यु का बुलावा किसी भी क्षण आ सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि बचपन से ही हम भगवान का भजन करें। इसलिए प्रहलाद ने अपने मित्रों को समझाया कि ये मत सोचो कि हम बहुत कम उम्र के हैं भक्ति करने के लिए, भजन तो वास्तव में अभी से शुरू करना चाहिए। प्रहलाद का बड़ा सौभाग्य था, प्रहलाद को नारद देव जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने उपदेश तब दिया था जब प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में थे। जब हिरण्यकश्यप जो कि असुरों के राजा थे वो तपस्या करने के लिए वन में गए थे, उस समय इंद्रदेव जो कि असुरों के शत्रु हैं, उन्होंने देखा कि अभी अच्छा मौका है, अभी हम हिरण्यकश्यप के राज के ऊपर डाका डालकर हम उसके सेना को खत्म कर सकते हैं। तो उस समय जब युद्ध हुआ तो इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की जो रानी थी कयादु, उसका भी हरण कर लिया और उसकी हत्या करने वाले थे। लेकिन उस समय नारद ऋषि वहां पर आए और नारद ने इंद्र से कहा कि आप ये रानी की हत्या क्यों करने जा रहे हैं? तो इंद्र ने कहा, क्योंकि इसके पेट में एक बच्चा है और वो हिरण्यकश्यप का बच्चा है, और आगे चल के ये हो सकता है कि हिरण्यकश्यप से भी बढ़कर असुर बनेगा, फिर सारे ब्रह्मांड में उत्पात करेगा, उपद्रव मचाएगा, इसलिए अभी इसको मारना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि स्त्री के ऊपर हमला करना क्षत्रिय के लिए आपके लिए उचित नहीं है, और दूसरी बात कि इस स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो भगवान श्री हरि का बहुत शुद्ध भक्त है, इसलिए इसकी हत्या करने से आपके सर पे बड़ा पाप लगेगा। तो फिर इंद्रदेव ने नारद जी के सामने हाथ जोड़ा और फिर जैसे आपकी आज्ञा कहकर नारद मुनि और उस बच्चे की प्रदक्षिणा की, क्योंकि जब नारद मुनि ने बोला कि ये पेट में जो बच्चा है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, बड़ा संत है, तो इंद्रदेव ने उसकी प्रदक्षिणा करके वहां से चले गए। तो नारद देव ने कयादु को अपने आश्रम में ले लिया और रोज कयादु को भागवत का उपदेश देते थे, भगवत कथा उनको सुनाते थे। अब कयादु बड़े श्रद्धा से सुनती थी लेकिन आगे चल के वो भूल गई। तो प्रहलाद को जब उनके मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद ये सब ज्ञान तुमने कहां से सीखा, तो प्रहलाद ने कहा मेरे गुरु ने सिखाया। तो मित्रों ने जवाब दिया कि अरे तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु तो एक ही है, शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमरक हम सबके गुरु हैं, और उन्होंने तो हमें ऐसे कुछ नहीं सिखाया जो तुम हमें सिखा रहे हो, तो कौन से गुरु ने तुम्हें ये सब सिखाया? तो उस समय प्रहलाद ने ये सारे इतिहास बताया और फिर कहा कि जब नारद देव ने मुझे उपदेश दिया तो उपदेश वास्तव में मेरे लिए था, मेरी माता के लिए कम और मेरे लिए ज्यादा। मेरी माता तो उपदेश भूल गई लेकिन मैं नहीं भूला। इसलिए हे मित्रों, भगवान की भक्ति मां के गर्भ से ही शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद ने सारे मनुष्य समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि भगवान की भक्ति केवल बुढ़ापे में रहकर नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे तक हम जिएंगे भी नहीं किसको मालूम, और बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचेंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन इतना हमें कष्ट देगा, हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकेंगे? अगर हमने जीवन भर तपस्या करने की अभ्यास नहीं किया हमने, तो बुढ़ापे में जाकर जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तब कैसे हम थोड़ी बहुत तपस्या कर पाएंगे? ये संभव नहीं है। इंद्रदेव की बात जब हो रही है तो और एक कथा याद आ रही है कि इंद्रदेव एक बार गए और अचानक अपने भ्रमण के दौरान एक ऋषि से मिले। उस ऋषि का नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद था कि उनकी बहुत लंबी आयु होगी। कितने साल जिएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके शरीर में जितने लोम हैं, जितने बाल हैं, उतने साल आप जिएंगे। उतने साल ही नहीं, उतने लंबे लंबे समय तक, ब्रह्मा जी के दिवस तक आप जिएंगे। तो लोमस के शरीर में कितने बाल, आप देखिए आपके शरीर में कितने बाल हैं, सर पे बाल हैं, हाथों में लोम, सब जगह है शरीर में, तो कितने करोड़ों करोड़ों बाल हुए होंगे लोमस ऋषि के शरीर पर। तो उनको बताया गया कि आपकी आयु ऐसे करोड़ों करोड़ों साल होगी, और तब से लोमस ऋषि जी रहे थे। तो इंद्रदेव जब आए लोमस ऋषि के पास, तो उन्होंने देखा कि लोमस ऋषि के पास कोई घर नहीं, कोई बंगला नहीं, कुछ नहीं, ऐसे झाड़ के नीचे बैठे हैं। तो इंद्रदेव ने सोचा कि हमें ऋषि की सेवा करनी चाहिए। तो लोमस ऋषि के पास में गए और बोलने लगे कि हे मुनिवर, आपके पास कोई घर नहीं है तो आप घर क्यों नहीं बनाते? मैं आपको मदद कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ, आपके लिए घर बना सकता हूँ। तो लोमस ऋषि कहने लगे कि अरे हे देवराज इंद्र, मनुष्य जीवन कितना क्षणिक है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है, कितने समय तक हम जीते हैं, और इतने चंद क्षणों के लिए जब मनुष्य जीवन हमें मिलता है, अगर वो हमें भगवान की भक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया तो फिर हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है। तो ये इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मैं घर बनाने के लिए, ये वो करने के लिए क्यों बिताऊं, कितना समय मेरा बर्बाद होगा, इसलिए मैं घर भी बनाने के लिए समय बर्बाद नहीं करता हूं, मैं केवल भगवान का भजन करता हूं। नारद देव ने यह सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी, कृपा कीजिए, इंद्रदेव ने जब ये सुना तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव का जो आयु है वो हमारे आयु के हिसाब से बहुत ज्यादा है, वो हजारों हजारों साल जीते हैं। लोमस ऋषि की तुलना से तो उनकी आयु कुछ भी नहीं थी, हमारे आयु के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। तो इंद्रदेव सोचने लगे, लोमस ऋषि की आयु करोड़ों करोड़ों साल है और मेरी आयु उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोमस ऋषि बोल रहे हैं कि ये घर बनाने के लिए मेरा समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन का मूल्यवान समय बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य जीवन कितना छोटा है, तो मुझे कितना और ऐसा सोचना चाहिए। तो इंद्रदेव बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन सारी योजना छोड़ दी, कहा मुझे अभी ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि मनुष्य जीवन में हमें भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, चाहे हम व्यापारी हों, हम कोई सर्विस कर रहे हों, हम गृहिणी हों, हम बच्चे हों, जो भी हों, हर एक अवस्था में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा है कि मनुष्य जीवन का हर एक क्षण करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का एक क्षण भी अगर बीत गया, जो क्षण बीत गया सो बीत गया। आप करोड़ों रुपए भी देने के लिए तैयार होंगे कि मुझे वो एक क्षण वापस चाहिए, क्या वो आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि वृद्ध अवस्था में कितने लोग शोक करते हैं अपने जवानी के लिए, अरे हाय जब मैं जवान था तो मैं ऐसा करता था, वैसे करता था, हम शोक करते हैं, जो बीत गया उसके लिए हम शोक करते हैं, लेकिन क्या वो समय हम फिर से ला सकते हैं? हमारे बीचे बीते हुए बचपन को, युव अवस्था को हम वापस ला सकते हैं? नहीं। आपके पास करोड़ों भी रुपए हो, अगर आप सारे पृथ्वी के राजा भी क्यों न हो, लेकिन आपके बीते हुए जीवन का एक क्षण भी आप वापस ला नहीं सकते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित बताते हैं कि मनुष्य जीवन का हर एक क्षण करोड़ों रुपए से ज्यादा मूल्यवान है। और यहां हमारी परिस्थिति ऐसे होती है समाज में, संसार में रहते हुए, कि जो बीत गया है उसके लिए हम शोक करते हैं, हाय हाय हमने गलत किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, और जो वर्तमान परिस्थिति है उससे हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, काश मेरे पास ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। तो देखिए संत ने बताया कितनी सुंदर बात है कि जो हो चुका उसके बारे में शोक करते हैं, जो अभी है उससे हम संतुष्ट नहीं है, और जो होने वाला है उसके बारे में चिंता करते रहते। तो ऐसे हमारा सारा मनुष्य जीवन चले जाता है। तो भगवान के लिए एक समय कहां किसी को, जिस काम के लिए हम यहां पर आए हैं उसको पूरा न करके हम दूसरे सारे काम करें तो कितने दुर्भाग्य की बात होगी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही मनुष्य भूल चुका है तो समाज में वो सुखी कैसे रह सकता है। समाज में शांति, सुख, भाईचारे की भावना, प्रेम, ये सब कैसे रह सकता है? ये संभव नहीं है। एक साधु ने उदाहरण दिया है कि जब हम शौचालय में जाते हैं तो एक विशेष काम से जाते हैं तो काम अपना करके जल्दी से आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे पश्चिम देशों में होता है, बड़ा बड़ा शौचालय होता है, उसमें नाना प्रकार के यंत्र। एक हमारे जो भक्त है वो बता रहे थे, वो जर्मनी देश में गए थे, वहां पे किसी के घर में गए और बड़े बड़े सब प्राय वैसे होता है। वहां के शौचालय में भी नाना प्रकार की चीजें, टेलीविजन और फिर उधर पढ़ने के लिए मैगजीन, अखबार और नाना प्रकार के मनोरंजन की वस्तुएं शौचालय के भीतर। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, शौचालय में हम किस लिए जाते हैं? अखबार पढ़ने के लिए, टीवी देखने के लिए नहीं जाते, हमें काम करके जल्दी आ जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से यह मनुष्य जीवन या भौतिक संसार में जब आए, हमें मनुष्य जीवन मिला तो अपना काम जल्दी से करके हमें भगवान के धाम में लौट कर जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति। लेकिन भगवान की भक्ति किए बगैर हमारा सारा समय इधर उधर हम गंवाते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। एक घंटा भी दिन में भगवान को देने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। हम जब लोगों को बोलते हैं कि आप थोड़ा भगवान का नाम जाप करो, थोड़ा सत्संग में आया करो, थोड़ा हरि कथा सुना करो, कुछ गीता भागवत अध्ययन किया करो, तो लोग क्या बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। और लोगों की धारणा ये रहती है कि हम केवल सुबह को शाम को नमस्कार करते हैं भगवान के सामने जाकर, इतना हमारे लिए काफी है। तो क्या ये दुख की बात नहीं है? जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा शरीर दिया है, हमारी बुद्धि, हमारा धन, हमारी योग्यता, हमारा कुटुंब, सब कुछ भगवान ने दिया है हमें, तो जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है उस भगवान के लिए अगर हम एक घंटा भी दिन में बिताना नहीं चाहते हैं तो क्या ये दुख की बात नहीं है? वास्तव में शास्त्र में बताया है कि हमें 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन 24 घंटे नाम लेना तो कठिन है, क्योंकि हमें अपने पालन पोषण के लिए अपने अन्य कर्तव्य वगैरह करने चाहिए। तो ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध्य च। हे अर्जुन, तुम युद्ध करते हो, तुम योद्धा हो, तो ठीक है अपना युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते समय मेरा स्मरण करो। ठीक उसी प्रकार से हम में से हर एक व्यक्ति के समाज में, जीवन में अलग अलग कर्तव्य रहते हैं। आप सब में कोई यहां कर्मचारी हैं, आप में से कोई ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, आप में से कोई गृहिणी हैं, कोई बच्चे हैं, हमारे अलग अलग काम रहते हैं जीवन में। हमारी दैनिक क्रियाएं करते करते मन ही मन में हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, नाम का उच्चारण मन में करते रहना चाहिए, और साथ साथ हमारे काम से हमें समय निकालकर भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसी कथा सुनने के लिए हमें आना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए। ऐसे करने से हमारे मनुष्य जीवन का कीमती समय का सदुपयोग होगा, अन्यथा हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जाएगा। मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ने बहुत सरल तरीका दिया है। बताया जाता है श्रीमद् भागवत में, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। वो कहते हैं कि पहले युगों में, सत्य युग में, भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान का मार्ग बताया जाता था। व्यक्ति को जंगल में जाना पड़ता था, अपने परिवार को त्यागना पड़ता था, संन्यास लेना पड़ता था और बहुत कठिनाई थी। हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान करना पड़ता था जंगल में जाकर। आज तो ये सब संभव नहीं है। त्रेता युग में, उसके बाद का जो युग आया, उसमें मनुष्य को भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करने पड़ते थे, विशाल यज्ञ, जैसे कि दशरथ महाराज ने किए, रामायण में यह कथा आती है। लेकिन आजकल हम लोग ऐसे बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना धन हमारे पास नहीं है और इतनी घी भी नहीं है, क्योंकि इतने गाय भी नहीं है। गायों को हम कत्ल करके कत्ल खाने बेचते हैं, फिर वो मांस को हम बाहर देशों में बेचते हैं हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए, तो कहां से घी आएगा। इतने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं आर्थिक परिस्थिति के, आर्थिक प्रगति के नाम पर, तो यज्ञ भी हम आजकल नहीं कर सकते। और उसके बाद वाला जो युग आया, द्वापर युग, द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान के ऐश्वर्यशाली आराधना करने का मार्ग बताया गया था। लेकिन आजकल कितने लोग बड़े बड़े मंदिर बना सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। इसलिए बताया जाता है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, केवल हरि कीर्तन का मार्ग ये कलयुग में एकमात्र मार्ग है जिससे हम हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। केवल भक्तों के संग में आकर जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, तो हमें वही फल प्राप्त हो सकता है जो कि सत्ययुग में हजारों साल ध्यान करने से मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, और द्वापर युग में बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाने के से मिलता था। कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप और कीर्तन, इतना सरल मार्ग है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, कोई धन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परिवार का व्यक्ति कर सकता है। जाति भेद नहीं, देश भेद नहीं, समाज भेद नहीं, इसलिए यह एकमात्र मार्ग है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो सारे विश्व भर में भ्रमण किए और भ्रमण करके देश भर में उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया, और उनके तपस्या के फल स्वरूप हम देखते हैं कि हरेक देश में आज इतने भक्त हुए हैं जो गीता और भागवत का अध्ययन करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनके पवित्र नामों का कीर्तन और जप करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था 5000 वर्ष पूर्व, वही 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने ये कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसका उद्घाटन किया। और कलि संतरण उपनिषद में जो महामंत्र का वर्णन है उसका प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का निरंतर जाप और कीर्तन करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। सारे हमारे हृदय में जो भी कष्ट हैं, तकलीफ है, मानसिक चिंताएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, और हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति का उदय होता है। इससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, और अंत में जब हमारी मृत्यु होगी तो हम पुनः भगवान के धाम में जाएंगे। हमें यहां पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के सिवाय, हरि के नाम के सिवाय, हरि के नाम के सिवाय और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, 3 बार बताया जाता है जोर देने के लिए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप भी सब श्री हरि का नाम का उच्चारण सतत करते रहें, भजन कीर्तन करें श्री हरि का, गीता भागवत को पढ़ें, किताब भी वहां उपलब्ध हैं, आप थोड़ी किताब लेकर इनको पढ़ सकते हैं और दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य जीवन को उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा आपके हृदय में बना के रखिए और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना आनंद आएगा, आपके सोचने का ढंग किस प्रकार से बदल जाएगा, किस प्रकार से आपके हृदय में शांतता और शुद्धिकरण आ जाएगा, ये अनुभव करने से आपको पता चलेगा। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का आप अवश्य लाभ लीजिए, इसका जाप और कीर्तन कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ सब इस प्रवचन के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए आए हैं और इतने ध्यान से आप सबने ये प्रवचन सुना। हम श्री HD काटवा जी के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ हमें आने के लिए निमंत्रण किया और ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई है ये हरि कथा हरि कीर्तन के कार्यक्रम के लिए। और यहाँ काटवा कंपनी के जो ऑफिसर, मैनेजर, कर्मचारी इत्यादि हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न करने के लिए इतनी सारी सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सेवा की है, परिश्रम किया है, हम आप सबके भी आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके बिना भी ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता था। और जिन लोगों ने छोटे और बड़े पैमाने से जो भी हो ये कार्यक्रम को बनाने के लिए मदद किया है, हम आप सबके आभारी हैं। और भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो भी उपस्थित या अनुपस्थित इस कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं और उनके कुटुंब के सदस्य हैं, उन सब के भक्ति में प्रगति होने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे और आशा करते हैं कि आप इस भक्ति मार्ग को बड़े गंभीरता से स्वीकार करेंगे और दिव्य आनंद की प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप चाहिए तो आप कन्नड़ में भी पूछ सकते हैं, फिर कन्नड़ से हिंदी में कोई भाषांतर हमारे लिए कर देंगे। हम थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे तो कृपा करके इसमें आप शामिल होइएगा, जो कि सत्व गुण में है। और गायत्री जप से हम केवल मुक्ति तक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन गायत्री जप से भक्ति नहीं मिल सकती। जब भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण हम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, केवल सत्वगुणी व्यक्ति ही नहीं, बल्कि जो पापी से पापी व्यक्ति है और से बड़ा संत है, दोनों ही ये कृष्ण नाम का उच्चारण कर सकते हैं और इससे मुक्ति से भी परे भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, जो कि गायत्री मंत्र से नहीं हो सकता। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो उसमें गायत्री मंत्र खुद ब खुद आ जाता है। हालांकि हम लोग भी गायत्री जाप करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के पवित्र नामों का जप करने से अन्य किसी भी मंत्र के जप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरि नाम ही अपने आप में पूरी तरह से समर्थ है हर उद्देश्य की पूर्ति के लिए। बहुत लंबा हो गया ट्रांसलेट करना, आपको श्रीमद् भागवत में लिखा है, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। इस श्लोक का अर्थ ये है, शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन दिया परीक्षित महाराज को, वो बोल रहे हैं, हे राजन, ये कलयुग जो है ये दोषों का सागर है, जहां भी हम देखते हैं वहां दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इस दोष के सागर में एक महान गुण है और वो महान गुण क्या है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन, और संकीर्तन करने से मुक्त संगह हम ये भौतिक संसार के परे जा सकते हैं और परम व्रजेत भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों का आदेश यह है कि केवल हरिनाम संकीर्तन करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके उनके वैकुंठ धाम को हम प्राप्त हो सकते हैं, हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं केवल नाम संकीर्तन करने से। ये है भगवान के नाम के अंदर जो बल है। लेकिन नाम लेना हमें श्रद्धा से होगा, प्रेम से, भक्ति भाव से लेना होगा, केवल एक यांत्रिक रूप से नहीं। जब हम हृदय से भक्ति भाव से लेंगे तब हम वास्तव में हरि नाम ले पाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए, ये सब सीखने के लिए, हरि नाम का उच्चारण कैसे करना है इसका अभ्यास करने के लिए हमें भगवान के भक्तों का संग अनिवार्य है, अति आवश्यक है। भगवान के भक्तों के संग के बिना हम कभी ये जान नहीं पाएंगे कि हरि नाम का संकीर्तन कैसे हमें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसलिए भगवान के भक्तों के संग में हमारे मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त हो सकती है और भगवान के भक्तों के संग के बिना हमारी कोई भी गति नहीं हो सकती है। तो हरिनाम संकीर्तन भगवत भक्तों के संग में किया जाता है और अगर हमने प्रति दिवस ऐसे करने का एक नियम बनाया, अभ्यास किया, तो अवश्य हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से केवल हरिनाम संकीर्तन से हम प्राप्त कर सकते हैं। हरिनाम के साथ साथ हमें गीता भागवत का संदेश भी सुनना चाहिए, हमारे श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, हमारे दृढ़ विश्वास को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी भगवान के भक्तों के संग में।
ज्ञान योग मत्तु भक्ति योग
पढ़ना। योग शब्द युज धातु से आता है, संस्कृत में युज धातु मतलब जोड़ना। तो योग वो पद्धति है जिससे हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ वो पुनः स्थापित हो जाए। इस समय हम भगवान को भूल गए हैं और योग का अर्थ होता है भगवान के संबंध को जो हम काट चुके हैं उसको पुनः जोड़ना। भगवान की ओर से संबंध टूटा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी ओर से संबंध टूटा हुआ है, हम भूल चुके हैं। जिस प्रकार से जब कोई बच्चा अपने पिता को छोड़कर जाता है, पिता बच्चे को भूलता नहीं है, लेकिन बच्चा पिता को हो सकता है भूल जाए, ठीक उसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं और गीता के अनुसार हम उनके अंश हैं। और योग पद्धति का मतलब है कि पुनः इस संबंध को स्थापित करना। तो ये संबंध स्थापित करने के लिए जो अलग अलग पद्धतियां हैं वो है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तीन प्रधान पद्धतियां हैं और ये एक सीढ़ी के समान है जो धीरे 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 से ऊपर जाती है। जब हम कर्म भगवान के लिए करने लगते हैं तो उसको कर्मयोग कहते हैं, जब कर्मयोग की परिपूर्णता ज्ञान में हो जाती है उसको ज्ञान योग कहते हैं, और ज्ञान योग की परिपूर्णता जब हम प्राप्त करते हैं और हमें भक्ति मिल जाती है तो उसको भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग योग की सीढ़ी का सबसे ऊंचा स्तर है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के छठे अध्याय में बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमो मतः। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो हमेशा अपने अंतःकरण में मेरा स्मरण करता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना, अपने अंदर ही अंदर श्रद्धा भाव से मेरा स्मरण करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से मेरा मुझे भजता है, मेरी सेवा करता है। समय युक्त तमो मतः, और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा मत है कि ये योगी जो सदा मेरा स्मरण करता है, भक्ति भाव से मुझ में तल्लीन रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। और दूसरे जगह भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वो कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते करते ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त करता है, जब वो ज्ञानवान वास्तव में बन जाता है, तो वो क्या सोचता है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं माम प्रपद्यते कि मेरे शरण में वो आ जाता है, और शरण में आकर वो क्या कहता है? वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव या श्री कृष्ण सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभः, ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है, और ऐसे महात्मा को ढूंढ निकालना बहुत कठिन है संसार में। इस प्रकार से ज्ञान योग की परिपूर्णता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लग जाए।
इन्नोंदु प्रश्ने इदे, अगले महास्वामिगळु हेळिदरु भक्तर समेत ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸಲ ಭಕ್ತರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗ ಕಂಪನಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ ಭಕ್ತರು ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೇ ಹೇ ಕಿ ಹಮ್ನೆ ಬತಾಯಾ ಹೇ ಕಿ ಸತ್ಸಂಗ್ ಸೇ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಅಗರ್ ಸತ್ಸಂಗ್ ಹಮೆ ಮಿಲೆ ನಹೀ ತೋ ಹಮೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ? पहली बात, अगर हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रही तो भगवान उसके लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं।
मदलने मातो नमके भगवंतन पड़ियो तीव्र इच्छा इद्रे हृदय दल्ली कुळितिरो परमात्मा ई इच्छेयन्नु पूर्ति माड्तारे।
जब भगवान जो कि हमारे हृदय में स्थित हैं देखते हैं कि ये जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान किसी न किसी तरह से सत्संग की व्यवस्था उसके लिए कर देते हैं।
अवाग परमात्मा हृदय कुल्तिरो परमात्मा बंद जीव तन्नन पड़ी के इच्छे मारता इदे अदन्ना तिरकोंडो भगवान ता आतन के अल्ला व्यवस्था ना मारता रहे।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल बैठे रहना है, सोचना है कि भगवान व्यवस्था सत्संग का करेंगे तो हमें सत्संग को के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, सत्संग हमारे पास आएगा, ऐसा नहीं है।
अर्थ हीगल्ल, ना सुम्ने कुळत बिट्रे कृष्णने अथवा परमात्माने नम हत्र बंदु नमगे व्यवस्था माड्ताने, नावु अदर सलुवागि प्रयत्न माडबेकु।
हो सकता है कि बैठे बैठे भी भगवान हमारे पास सत्संग को लेकर आए, हो भी सकता है।
हीगागलू बहुदु कूड कृष्णने अथवा परमात्माने नम हत्र कूड बरबहुदु सत्संग व्यवस्थे माड्लिक्के,
लेकिन अगर हमारे पास सत्संग नहीं आए तो हमें सत्संग के पास जाना चाहिए।
आदरे सत्संग नम हत्र बरदे होद्रे नावे सत्संग हुडिकोंडु होगबेकु।
जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं तो किसी न किसी तरह से इधर उधर भाग दौड़ करके उसको ढूंढ निकालते हैं।
नाव यावदादरू ओंदु वस्तुवन्नु पडिलिक्के प्रयत्न इच्छे माडिद्रे अदन्न हेगादरू माडि पडिलिक्के नावु एल्ल प्रयत्नगळन्नु माड्तेवे।
हिंदी में कहावत है, जहां है चाह वहां है राह, अर्थात जहां हमें इच्छा है तो कोई न कोई मार्ग निकल जाता है।
कन्नड़ दल्ली कूड़ा मनसिद्दल्ली मार्ग इदे अंत हेळिके इदे तमगे गोत्तिरबहुदु।
इसलिए हमें थोड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए।
हीगागि नावु स्वल्प सत्संगवन्नु पडिलिक्के स्वल्प प्रयत्नवन्नु माडबेकु।
कष्ट उठाए बिना किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है, या भौतिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में, दोनों में।
प्रयत्न विल्लदे नाव आध्यात्मिकवागली भौतिकवागली एनन्नु पडिलिक्के साध्य इल्ल।
भौतिक क्षेत्र में संसार में सभी लोग कितना कष्ट उठाते हैं अपनी आमदनी कमाने के लिए, बच्चों के शिक्षण के लिए इत्यादि।
भौतिक जगत एल्लरू तम्म संसारवन्नु सरिदूगिसलिक्के एष्टोंदु कष्ट पड़तारे।
लोग कितने दूर दूर जाते हैं कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए।
जनरु एष्टु दूर तम्म मने मठगळन्नु बिट्टु हण गळिसलिक्के शिक्षण पडिलिक्के होग्तारे।
तो अगर सत्संग हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हमें चेष्टा करना चाहिए कि जब भी हो सके, जब भी संभव है, हम सत्संग में जाएं।
नमगे सत्संग लाभ सिक्ता इल्ल अंद्रे ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ.
ಜಿತ್ನಾ ಹಮ್ ಸತ್ಸಂಗ ಜಾದಾ ಜಾನೆ ಕಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೆಂಗೆ ಉತ್ನ ಹಿ ಜಾದಾ ಲಾಭ ಹಮೆ ಹೋಗಾ.
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಸಂಗದ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಲಾಭ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ ಹಮ್ ಜಾದಾ ಸೆ ಜಾದಾ ಸತ್ಸಂಗ ಜಾಯೆಂಗೆ ಔರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಕರೆಂಗೆ ವೈಸೆ ವೈಸೆ ಹಮಾರೆ ಚಿತ್ತ ಕಾ ಪರಿವರ್ತನ ಹೋಗಾ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ.
ಫಿರ್ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಹಿ ಜಗ ಮೇ ಸತ್ಸಂಗ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಥೋಡೆ ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಜಿನ್ಕಿ ಭಿ ರುಚಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಹೈ.
ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಯಹಾಂ ಭಿ ಜಹಾಂ ಭಿ ಹಮ್ ರಹತೆ ಹೈ ವಹೀಂ ಪರ್ ಹಮ್ ಸತ್ಸಂಗ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೋ ಹಮ್ ಸಂಗ ದೇಕರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ.
ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಔರ್ ಅಗರ್ ಹಮಾರಿ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಹುಯಿ ತೊ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಭಕ್ತ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಜಗೆ ಸೆ ಆಕರ್ ಹಮೆ ಸಂಗ ದೇ ಭಿ.
ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಒಂದು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಔರ್ ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹಮ್ ಬಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮೇ ಜಾಯೆಂಗೆ ಚಾಹೆ ವೊ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ದೂರ್ ಕ್ಯೂ ನಾ ಹೋ ಔರ್ ವಹಾನ್ ಜಾಕರ್ ಹಮಾರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕರ್ಕೆ ಹಮ್ ಆ ಸಕ್ತೆ ಹೈ.
ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ಲಾಭ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಜಬ್ ಹಮಾರಿ ಯಹಾಂ ಸತ್ಸಂಗ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹಮೆ ಸತ್ಸಂಗ ಢೂಂಡ್ ನಿಕಾಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಢೂಂಡ್ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮೇ ಮಜಬೂತ್ ಹೋಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಯಹಾಂ ಹಿ ಸತ್ಸಂಗ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ಯೆ ದೋನೋ ಚೀಜೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಚಲ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ.
ಹೀಗೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಾ ಜಾಪ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಲಾಭ ಮಿಲೇಗಾ? ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಲಾಭ ಮಿಲೇಗಾ ಔರ್ ವೊ ಹೈ ದಿವ್ಯ ಆನಂದ್, ಸದಾ ಆನಂದ್. ಕೌನ್ ಐಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ಜೊ ಆನಂದ ನಹೀ ಚಾಹತಾ ಹೈ? ಕೌನ್ ಐಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈ ಜೊ ದುಃಖ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋನಾ ನಹೀ ಚಾಹತಾ? ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೊ ಮಾರ್ಗ ಹೈ, ಔಷಧ ಹೈ, ವೊ ಹಮ್ ನಹೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಕಾ ಜಪ ಔರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಯೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ತೊ ಉಸ್ ಸಮಯ ಹಮಾರೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಜೊ ಭಿ ಅನರ್ಥ ಹೈ ವೊ ಸಬ್ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮಿಲ್ ಜಾತಿ ಹೈ, ದಿವ್ಯ ಆನಂದ ಮಿಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮೆ ಪುನಃ ಯಹಾಂ ಜನ್ಮ ಲೇನೆ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಪಡ್ತಿ, ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಧಾಮ ಮೇ ಚಲೇ ಜಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಜೀತೆ ಜೀ ಜಬ್ ತಕ್ ಹಮ್ ಇಸ್ ಶರೀರ ಮೇ ಹೈ ಹಮ್ ಅನುಭವ ಕರೆಂಗೆ ಕಿ ಯೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಾ ಜಾಪ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಮನ್ ಬಹುತ್ ಶಾಂತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಮನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಆ ಜಾತಿ ಹೈ, ಹಮೆ ಜೀವನ ಮೇ ಏಕ್ ಧೈರ್ಯ ಮಿಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಏಕ್ ಉದ್ದೇಶ ಮಿಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಹಮಾರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಹಮ್ ಸಫಲ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಹರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಹಮ್ ಸುಖಿ ಔರ್ ಆನಂದದಾಯಕ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ.